मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोकायत, जिसे चार्वाक दर्शन भी कहा जाता है, इस विषय पर बात करेंगे। और इसी के साथ ही जो फिलॉसफी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका सिलसिला रुक जाएगा। और फिर जो भी करंट अफेयर्स में हुए हैं और जो हमारा पुराना पैटर्न रहा है डेली ऑडियो लेक्चर का, उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि यह लोकायत क्या है। आपको ध्यान होगा कि अक्सर मैं शब्द के विश्लेषण की बात करता हूं कि पहले शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करें, हो सकता है कि उसमें कोई बात हाथ लग जाए। तो जब आप लोकायत को समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए इसका अर्थ क्या है। लोकायत, लोक का मतलब होता है जगत, लोग, लोकतंत्र, और आयत का अर्थ होता है विश्वास। लोकायत यानी कि एक ऐसी दर्शन प्रणाली या एक ऐसा विचार जिसे लोग बहुत पसंद करते हो, आप कह लीजिए। मोटे तौर पर समझाने के लिए मैं ये बात कर रहा हूं, यानी कि लोगों के बीच लोकप्रिय दर्शन। चलिए, यह एक अर्थ हो गया। दूसरा है, इस दर्शन का नाम चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन, यूं कह लीजिए कि यह पहला ऐसा दर्शन है जिसका नाम दर्शन शास्त्री पर है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं कि पहला ऐसा दर्शन। देखिए, सांख्य, वैशेषिक न्याय, ये सब तो उसकी विशेषताओं पर हैं, उनके जो प्रतिपादक रहे हैं उनके नाम पर नहीं रखे गए हैं। लेकिन जो चार्वाक दर्शन है, बेसिकली चार्वाक अपने आप में दार्शनिक रहे हैं, एक दार्शनिक का नाम है चार्वाक। क्या चार्वाक का भी कोई अर्थ है? चार्वाक का अर्थ है, ये चारु प्लस वाक दो शब्दों से मिलकर बना है। चारु का अर्थ होता है सुंदर, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, जो मन को अच्छा लगे, मनमोहक। चारु वाक का अर्थ होता है शब्द, वचन, बोल, यानी कि ऐसे बोल, ऐसे वचन, ऐसे शब्द जो लोगों को बड़े सुंदर लग रहे हों, लोगों को पसंद आ रहे हों, चार्वाक। तो भाई, इस दर्शन में ऐसा क्या था जिसे लोग इतना ज्यादा पसंद करने लगे थे? हाँ, और ये दर्शन अपने समय में बहुत लोकप्रिय दर्शन रहा है, और खासकर जो कौटिल्य हैं अपने अर्थशास्त्र में, उन्होंने उल्लेख किया है कि ये अभी के सबसे लोकप्रिय दर्शनों में से एक है, चार्वाक दर्शन। अब ऐसा क्या हो सकता है इसमें जो लोगों को पसंद आए? आप अपनी ओर से सोच करके देखिए। हालांकि जब आप इस दर्शन के बारे में पढ़ेंगे आगे चल करके, तो आपको इसमें सांख्य भी मिल जाएगा, वैशेषिक न्याय, जिनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उनके तत्व मिल जाएंगे। जैसे अगर चार्वाक दर्शन ये कहता है कि हम भगवान को नहीं मानते, उन लोगों ने भी यही कहा है। हम आत्मा को नहीं मानते, उन लोगों ने भी यही कहा है। चार्वाक दर्शन भी यही कहता है कि ये जो संसार की उत्पत्ति है ये पदार्थ से हुई है। सांख्य दर्शन सीधे तौर पर ये कहता ही है कि पदार्थ से उत्पत्ति हुई है। यहां तक उसने कहा है कि भिन्न भिन्न जो पदार्थ हैं, जो अचेतन हैं, उनसे चेतन की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब मनुष्य का शरीर है, इसने चार तत्व माने, उसमें स्पेस को नहीं लिया उन्होंने, स्थान को। बाकी चार तत्व उन्होंने जो और लोगों ने कहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चार तत्वों को सबसे प्रमुख तत्व माना है और कहा है कि इसी से पूरे के पूरे विश्व की रचना हुई है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। बाकायदे वो उदाहरण भी देते हैं, अगर आपने कभी पान खाया हो तो आप देखिए कि पान का पत्ता हरा होता है, उसमें सुपारी डाली जाती है, उसमें कत्था डाला जाता है, उसमें चूना डाला जाता है, और जब आप उसको खाते हैं तो पता लगता है कि पान का रंग लाल हो गया। तो चार्वाक ने कहा किसी तरह से है कि जब इन चार तत्वों को मिला देते हैं तो कोई एक नई चीज बन करके तैयार हो जाती है, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है, ये तो होता ही ऐसा है। इसका मतलब है, सामान्य तौर पर आप कह लीजिए, कि जो चार्वाक दर्शन भी था वो पूरी तरह से एक भौतिकवादी दर्शन ही रहा है। छठवीं और आठवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व इसका अस्तित्व मिलने लगा था, और परंपरा के तौर पर यह माना जाता है कि जो बृहस्पति ऋषि थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, लेकिन मूलतः यह दर्शन अस्तित्व में आया या इसने अलग पहचान बनाई थी चार्वाक ऋषि के समय में, और पूरी तरह से यह एक भौतिकवादी दर्शन है। लोगों को यह इतना पसंद क्यों आया, आइए इस पर बात करते हैं। इसने बहुत खूबसूरत प्रश्न उठाए। इन्होंने कहा कि ये जो कर्मकांड और ये जो बड़े बड़े ऊंची ऊंची बातें करते हैं ना, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं कि वहां स्वर्ग है, और बकायदे इन्होंने कहा कि स्वर्ग में जाओ, वहां नृत्य देखने को मिलेगा, वहां अच्छी हवाएं चलेंगी, वहां खूब खाने पीने को मिलेगा, आराम करने को मिलेगा। बोले साहब, सबकी सब बेवकूफी भरी बात है। उन्होंने प्रश्न किया कि भैया ये बताओ कि यदि कोई आदमी मर करके स्वर्ग जा सकता है तो इतनी लंबे समय से दुनिया जिंदगी चली आ रही है, कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वहां से कोई आदमी चल करके जो मर गया है यहां अपने दोस्तों और प्रियजनों से मिलने के लिए आ जाए? कभी तो ऐसा हो जाता। अब आप सोचिए कि जब आप इस तरह के प्रश्न उठाएंगे तो क्या लोगों को मजा नहीं आएगा? और लोगों को मजा सच पूछे तो इसलिए भी आ रहा था क्योंकि लोग उस समय के जो पंडित पुरोहित हुआ करते थे, जिस जिस तरह की बातें रखते थे, उससे काफी कुछ त्रस्त भी हो गए थे, त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे। उनको लगता था कि हम अधर्मी हैं क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पापी हैं। तो उन्हें वो बातें पसंद नहीं आ रही थी और कहीं ना कहीं वो अपने को जकड़न में भी महसूस करने लगे थे। इसीलिए उपनिषद हमारे सामने आए। बलि प्रथा पर इन्होंने सवाल उठाया क्योंकि उस समय यह कहा जाता था कि जिन पशुओं की भी बलि चढ़ाई जाती है, वे जो पशु होते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है, वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह बात कही गई। तो फिर चार्वाक दर्शन ने एक प्रश्न उठाया कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। हालांकि यह मानता नहीं था मोक्ष वोक्ष की, लेकिन अब प्रश्न उठाना है तो बात कहनी है कि हर कोई चाहता है कि उसे संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और बोले, हर जो बेटा माँ, जो बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, अपने माँ बाप के लिए मोक्ष चाहते ही चाहते हैं, कौन भला नहीं चाहेगा अपने माता पिता का। तो बोले, वो ऐसा क्यों नहीं कर देते कि अपने माता पिता की ही बलि चढ़ा दे, क्योंकि बलि चढ़ाने के बाद तो ये पक्का है कि वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, तो उनको मोक्ष मिल जाएगा, तो ये सबसे आसान रास्ता है। तो ये लोग ऐसा करते क्यों नहीं है? दोस्तों, इस तरह से बहुत इन्होंने कठिन कठिन सवाल खड़े किए और इनके किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। क्योंकि इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो प्रत्यक्ष जगत है, जो हमें दिखाई दे रहा है, यही सब कुछ है, इससे परे और कहीं कुछ भी नहीं है। और जो भी बातें कही जा रही हैं वो मूर्खतापूर्ण है, बातें कहने वाले मूर्ख हैं और दूसरों को मूर्ख बनाने की वो चालाकी दिखा रहे हैं, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। इनके प्रश्नों के जवाब किसी के पास नहीं होते थे। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को आप भोग लगा रहे हैं, मिठाई चढ़ा रहे हैं, तो कहते हैं वो खाते क्यों नहीं है? आप क्या करते हैं फिर? उस मिठाई को आप ले लेते हैं और खा जाते हैं। तो फिर वो प्रश्न करते हैं कि आप अपने लिए चढ़ा रहे हैं या आप उनके लिए चढ़ा रहे हैं? तो इस तरीके से दोस्तों उन्होंने फिर एक इनके नाम पर एक बहुत छोटा सा एक मुहावरा प्रचलित है, आप कह लीजिए कि एक दोहा नुमा कथन प्रचलित है जो इनके सिद्धांतों को पूरी तरह से व्यक्त करता है। और शायद इसे सुनने के बाद आपको लगे कि समझ में आ गया मुझे लोकायत, चार्वाक दर्शन समझ में आ गया। इन्होंने कहा कि जो भी इस संसार में दिखाई दे रहा है वही सच है, जो भी वस्तुएं हैं वही सत्य हैं, इससे परे कहीं कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो, उधार लेकर घी पियो, मतलब मस्त रहो। अब आप बताइए कि जब आप पब्लिक को ये कहेंगे कि मस्त रहो, अलमस्त रहो, तो क्या पब्लिक को पसंद नहीं आएगा? और खासकर ऐसे पब्लिक को जो उस समय इन पंडित पुरोहितों की बातें कर्मकांड की वजह से सुन सुन करके तंग आ गई थी, तो उसे बहुत ही राहत मिली, राहत मिली। मुझे लगता है कि ये इसका केंद्रीय बिंदु है और धीरे धीरे चार्वाक दर्शन अब आपको स्पष्ट होने लगा होगा। देखिए उन्होंने और दूसरी क्या बातें कही। उन्होंने कहा कि जो कभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, कभी सामने आया ही नहीं, जैसे ईश्वर कभी सामने आया ही नहीं, तो बोले उसके अस्तित्व को कैसे माना जा सकता है? और फिर दूसरी बात भी कही, उन्होंने कहा कि जो एक बार अस्तित्व में आ गया या एक बार प्रत्यक्ष हो गया, वो फिर चाहे कितने लंबे समय तक गायब रहे लेकिन उसका अस्तित्व रहेगा, यानी कि वह फिर कभी आ सकता है। ईश्वर कभी प्रत्यक्ष नहीं आया, स्वर्ग कभी प्रत्यक्ष नहीं आया, नरक कभी प्रत्यक्ष नहीं आया, तो सीधी सी बात है कि उनका अस्तित्व तो है ही नहीं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात और कही थी कि जो हमारे मोर होते हैं, पिकॉक होते हैं, उनके बड़े पंख बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े रंगीन होते हैं, तो उन्होंने प्रश्न किया कि इनके पंखों को किसने सजाया, कोयल से गाना कौन गवाता है, कोयल गाना गाती है तो कोयल से गीत कौन गवाता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं, इसका जो कारण है वो एकमात्र प्रकृति कारण है, प्रकृति ही ऐसा करती है। यहां आपको, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि उपनिषद को समझने के लिए आपको अगर डार्विन के विकासवाद की जरा भी समझ है तो आप पाएंगे कि डार्विन जिसे 1850 के आसपास बता रहे हैं उसे हमारे ऋषि मुनियों ने कितने साल पहले, आप कल्पना करके देखिए कि विजुलाइज कर लिया था कि वास्तव में संसार का निर्माण किस तरीके से हुआ है। जहां तक आत्मा की बात है फ्रेंड्स, इन्होंने सीधे सीधे कहा कि नहीं, ये जो शरीर है यह शरीर ही आत्मा है, दूसरा कहीं कुछ भी नहीं है। जो लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सब के सब मूर्ख हैं और वो अपने शरीर को बेवजह कमजोर करते हैं। और यहां तक उन्होंने कहा कि ये जो चतुर लोग हैं ना, ये दान दक्षिणा की व्यवस्था करके अपने पेट भरने का इंतजाम कर लेते हैं कि इनको भोजन कराया जाए, क्योंकि इनके पेट पिचके हुए हैं। यहां आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इनकी जो भाषा होती थी ना, जो मैं उन्हीं तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप देखिए कि कितनी कड़ी भाषा है, कठोर भाषा है। आप ठीक है अपनी बात कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी भाषा भी बिल्कुल लठ मार, आप कह लीजिए पत्थर फेंक भाषा का इस्तेमाल करते थे, जैसे कबीर दास करते थे। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि कबीर ने शायद कहीं चारवाक के दर्शन से ही तो अपनी भाषा का चयन नहीं किया। तो जब इस तरह की भाषा का ये चयन करते थे तो लोग तिलमिला जाते थे। कौन लोग? आम लोग नहीं, पंडित पुरोहित, जिनके स्वार्थों को चोट पहुंच रही है, बिल्कुल तिलमिला जाते थे, वो बिल्कुल छटपटा उठते थे। तो अपने समय में चारवाक दर्शन का बहुत विरोध हुआ, चारवाक तक का व्यक्तिगत रूप से विरोध हुआ, उनके हत्या करने की कोशिश की गई लंबे समय तक। फिर इसका लगातार विरोध होता रहा, विरोध होता रहा, विरोध होता रहा, खंडन होता रहा। और देखिए, अगर किसी भी चीज का लंबे समय तक विरोध होगा तो सीधी सी बात है कि फिर उसे बचा करके रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों ने यह मानना शुरू किया कि ये जो चारवाक दर्शन है लोगों को भ्रष्ट आचरण के लिए प्रेरित कर रहा है, या लोगों को भौतिकवादी बना रहा है, आध्यात्मिक जीवन से दूर ले जा रहा है, अधर्म और पाप की बात कर रहा है, इस तरह के फिर वो होने लगे, प्रचार होने लगे। तो धीरे 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 फिर चारवाक दर्शन आप यूं कह लीजिए कि समाप्त सा ही हो गया, लेकिन इसके जो विचार थे उन विचारों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, उनकी जो सच्चाइयां हैं उन सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और इसीलिए भारतीय दर्शन परंपरा में चारवाक दर्शन के अध्ययन को भी एक सम्मानजनक स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, ये मैंने लोकायत के बारे में आप सबसे कुछ बातें की, और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसके साथ ही अब जो दर्शन शास्त्र पर हम लोग बात कर रहे थे उसे अब हम समाप्त करेंगे, और जो पुराने स्टाइल में जो हम लोग डेली ऑडियो लेक्चर तैयार करते थे, आप तक पहुंचाते थे, उसी की शुरुआत अब फिर से हो जाएगी। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और अब आप सबसे इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।